वंशाकल्पतरुश्चितानां पावने नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभान प्रणमामि हरि। हा देविका तू भर गद गदयाद्य वाचा जाते निपत्त भुवि दंडवत उपकारिते अस्य प्रसादम अस्य गंधर्विते तव गणेश अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दीवरम जटं जागुधरो च संग विदध तंग पट्टंबरस्य श्रिया नारं आसनं हृदि लसद्दामाभिरामो ध्यायन्त भक्त्या विघ्नापराधलक्ष क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय हरभक्ताय वैराग्य जग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायं मां भिक्षुमन् कृपां बुधिर्ज पर दुख दुखी सनातन श्री चैतन्य मनोभीष्ट भापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति यं प्राप्यते द्वैपायनो विरहकातरया विहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम्। गोप कुमार की तरफ उनको साधन करना पड़ेगा, है ना, साधन जरूर करना। भगवान और गुरु अंतर्यामी होते हैं कि नहीं, हम साधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान भी देखते हैं और गुरु भी देखते हैं। जल्द ही हम साधन नहीं कहेंगे और कहेंगे ये हम साधन कर रहे हैं, फाकेबाजी मार रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, है? भगवान क्या करेंगे बतलाओ। वो भी फांकी देंगे जे जथा नाम पर सब जानते हैं। जैसा हम तो भगवान करता है जो फांसीबाजी मारेंगे तो भगवान भी उनके साथ में डबल फांसीबाजी मारे।
भगवान साक्षात होने पर ही ना फांसीबाजी हो गई, जब पंचायत ही नहीं है तो क्या होगा।
साधक अवस्था में भी ना, सबसे पहले जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं उचित जो दक्षिणा नहीं देता उसका उसकी दीक्षा रद्द हो जाती है। एक कोई श्लोक ऐसा है, पढ़ा है तुम लोग कि नहीं, ना? दक्षिणा जो नहीं देगा दीक्षा के समय में उसकी दीक्षा खत्म हो जाएगी। जो लौकिक पुरुष है लौकिक रूप में दक्षिणा देगा, पारमार्थिक व्यक्ति पारमार्थिक कुछ दक्षिणा देगा, किंतु देना पड़ेगा सब। और दक्षिणा में यदि कोई फांसी दिया पहली स्थिति में ही फीस नहीं जमा किया और नाम लिखाने के लिए दिया, गया मैं दे रहा हूँ और नाम लिख लीजिए आप, मैं अभी ला रहा हूँ, आप नहीं दिया तो समझ रहे हैं कुछ खूब, सब लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इधर दक्षिणा जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा ही नहीं होगी, और देने के बाद भी यदि हम उनको फांसी देंगे तो फिर, इसलिए ये करो ऐसा नहीं, साधन ठीक ठीक करो, और मठ मंदिर का सब कुछ ही साधन है, इसलिए सोच विचार करके कोई चुपचाप मत बैठे। आग्रह था खेल तू क्या बस बन, सब समय सेवा का जितने लागे, चाहे हरिनाम हो चाहे मठे अन्य कौन सेवा, एक तो कुछ नहीं विशेष साधन भजन जन्म हमारे सब समय आज, किंतु ताकि यदि फाँकीबाजी मारिए मेरा एक जने क्योंकि कुछ बोलते ना हो जे यही करो वही करो, नहीं तो हमारा सब व्यवस्था मैनेजमेंट मध्य लेके गलम कह लेता है, एक जने सब देखे सुने सब सेवा काज करब साधन भजन करब और दिखला करके मैंने प्रदर्शन करने की जरूरत, साधन भजन जितना जो छिपा करके करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा, रोज रोज पाठ करने की भी जरूरत नहीं है।
सुमित्रा डॉक्टर के अनुसार सुमित्रा ऋषि कुमार सुमित्रा
यही सुनिए डॉक्टर ऋषि से डॉक्टर को पहले जाइए तो देखिए आज तुम लोग वैकुंठ प्राप्ति के जो साधन वो लोग बतलाए थे, जिसमें वो चतुर्भुज जो भगवान के पार्षद थे वो बतला रहे हैं, मन्यामहे कीर्तनम्य एव सत्तम लोलात्मक स्वहृदय सुरत स्मृते बाकी स्वयुक्ते मनसी सुतौ तथा दिव्यत पुराण अप उपकुर्वत आत्मवत। जितने प्रकार के साधन हैं वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ से यहाँ समग्र वैकुंठ को समझ लो अप टू वृंदावन सबको समझ, तो सबके लिए एक जनरल कह रहे हैं साधारण रूप में बतला रहे हैं कि बहुत से साधन हैं वैकुंठ के, जिसमें नौधा भक्ति पंचधा भक्ति 64 प्रकार की भक्ति इत्यादि है, जैसे वैकुंठ में जाता है, इसमें भी तीन प्रधान श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसमें भी कीर्तन और स्मरण दो प्रधान। स्मरण मैंने क्या, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवा के से अपने प्रिय भगवान के नामों का कीर्तन और मन के द्वारा स्मरण उन लीलाओं का, तो इसमें कुछ कुछ लोगों का विचार है, और की तो बात छोड़ दो और मैं तो ध्यान ऊंचा बतलाते ही हूँ, हमारे संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राधानुगा भक्ति के लिए स्पेशली ध्यान को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं, अतः स्मरण को अष्टकाली लीला स्मरण इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का स्मरण इसको सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, किंतु जीव सनातन गोस्वामी जी यहाँ गोप कुमार और चतुर्भुज पार्षदों के माध्यम से ये बतला रहे हैं मन नाम है, किंतु हम मैं कौन का चतुर्भुज नारायण के पार्षद का है और सनातन गोस्वामी यहाँ हम लोगों से कह रहे हैं, संकीर्तनम एव सप्तमम, संकीर्तन ही सप्तमम तमम सप्तम माने सबसे श्रेष्ठ संकीर्तन। क्यों? चित्त तो लोलात्मक है, मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। यदि कोई मन को स्थिर करके लीलाओं का स्मरण करे तो तब तो ठीक है, किंतु ये किसी भी स्थिति में ये मन शांत नहीं होगा, चंचल रहेगा। उसको केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? यदि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जोर जोर से एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या जातान रागो धृतचित्त उच्चै, धृतचित्त उच्चै उच्चै रूप में भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का यदि कीर्तन किया जाए तो वह कीर्तन एक जिह्वा से निकलकर मस्तिष्क में पहुंच करके मन को और सारी इंद्रियों के क्रियाओं को स्तब्धित कर देता है। पृथक रूप में चंचल मन को किसी भी स्थिति में उसको दमन नहीं किया जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता है। उस मन को एकाग्र करने के लिए भी जरूरत है तो कीर्तन। इसलिए विशेष करके कलयुग में महाप्रभु जी ने बतलाया, अब कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अयो केवल कलौ नास्ते व ध्यानम नास्ते व यज्ञ व्रत हम साध्याय संयम नास्ते, केवल हरिनाम संकीर्तन ही। तो ये लोलात्मक मन को भी चंचल मन को भी स्थिर कौन करेगा? इसलिए संकीर्तन के अधीन यदि स्मरण हो तो वो ठीक है। इसलिए बाकी संयुक्त जीवन में ये नाम संकीर्तन उत्पन्न हो करके बाकी समस्त सारी इंद्रियों को और मन को भी अपने वशीभूत कर लेता है। बिना सवार का घोड़ा लगाम नहीं है, घोड़ा और सवार नहीं, तो घोड़ा क्या करेगा? जहां इच्छा तहां दौड़ेगा। ऐसे यदि मन रूपी घोड़े पर यदि कीर्तन रूपी सवार को चढ़ा दिया जाए और उसके हाथ में बागडोर पीर दिया जाए तो घोड़ा विपत्ति में इधर उधर कहीं जहां चाहेगा वहां रुकेगा। ठीक ऐसे इसलिए उन लोगों का कहना वो चीज ठीक नहीं, ये बतला रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति के लिए भी, ब्रज जाने के लिए भी यही, इसलिए उनके गुरु ने बतलाया श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसिद हे वल्लभी जीवन। अच्छे कोई एक आदमी नमात्मक कीर्तन न करके अष्टादश मंत्र का जप करे तो वैकुंठ जा सकता है कि नहीं, या गोलोक ब्रज में जा सकता है कि नहीं, जाएगा कि नहीं, तो क्या होगा? लोगों ने कहा है कि गोपियां जितने लोग महर्षि हुए थे ना, गोपाल मंत्र का जप करके ही गोपी का स्वरूप प्राप्त
हुआ। नाम कीर्तन करते थे
वो तो लिखा नहीं करते, ये 60,000 महर्षि जो थे रामलीला में देखा जाता है वो लोग गोपी मंत्र का गोपाल मंत्र का ही साधन करते। तो फिर ये गोपाल मंत्र कम है या काम गायत्री कम है या बैकुंठ में वहां नहीं पहुंचा देगा? वो तो गोप कुमार किया था, किंतु इन उदाहरण से ऐसा मालूम होता है कि ये भी कम नहीं है भाई। गोपाल मंत्र और काम गायत्री सिद्ध मंत्र हैं और इनके साधन करने से आदमी ब्रज को प्राप्त हो जाता है। कैसे इसका सामंजस्य किया जाएगा? इतना सहज नहीं जितना तुम समझ रहे, बहुत बड़ा भारी कठिन चीज है। ये भी देखना है कि वो सिद्धांत गड़बड़ न हो जाए, नाम संकीर्तन ही वहां पर पहुंचाएगा। और इधर भी लिखा है जैसे इस मंत्र का साधन करके बहुत से लोग वो लोग ब्रज में गए, कैसे इसका मीमांसा होगा? खूब सहज है, सिद्धि किया कहाँ, साधन किया कहाँ? इस भौम जगत में, ब्रज में हो चाहे जहां भी किया, ब्रज में ही रहकर के किया या दंडकारण्य में, उन लोगों ने किया गोपाल मंत्र से। इससे जिस मंत्र की सिद्धि हुई, संबंध ज्ञान उसका स्थाई भाव के रूप में परिणत हो गया। जिसका जैसा जैसा भाव है उसकी सिद्धि हुई, बस इस लोक तक ही वो सीमित रह गया, जाने के योग्य हो गया, समझ गया। अब वो गोपी गर्भ से ब्रज में जहां पर के कृष्ण की प्रकट लीला चलता है वहां पर वो पहुंच गया योग माया के प्रभाव से, और ब्रज में गोपियों के गर्भ से उत्पन्न होकर के चाहे वो सखा हो, चाहे माता पिता हो, और चाहे दूती हो, जन्म लेना पड़ेगा और वहां का अभिमान होगा, और वहां पर मंत्र की फिर जरूरत नहीं है। वहां पर कीर्तन इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और कीर्तन और गोपियों का संग या गोपालों का संग, नित्य परिकर वालों का संग, और इसके बाद में तब फिर वो लोग बैकुंठ में जाएगा, ब्रज में जाएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं चला जाएगा कोई, इसलिए इसका सामंजस्य इस रूप में, इसके द्वारा सिद्धि हो जाएगी। पहले स्वरूप सिद्धि और अंत में शरीर छूट जाएगा, वस्तु सिद्धि हो जाएगी, बस वहीं तक वो रह गया, यहीं तक मंत्र का काम है, साधन का, सिद्धि में उसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए इस मंत्र के द्वारा गोलोक ब्रज में गए, ये बात ठीक है, दरवाजे तक पहुंचा दिया, अब तुम भीतर जाओ, और वहीं तक मंत्र का कार्य रह गया। आ रहा है समझ में कुछ? इसलिए दोनों बातें ये ठीक है, बिना गोपाल मंत्र के और काम गायत्री के कोई भी आदमी कोई साधन ही नहीं कर सकता, बल्कि नाम संकीर्तन भी करेगा उसका ठीक नहीं होगा, केवल नाम संकीर्तन से नहीं होगा उसका, क्योंकि उस शुद्ध नाम नहीं निकल रहा, इसलिए संबंध ज्ञान हो जाएगा, भावना एकाएगी मंत्र के द्वारा हमारा क्या स्वरूप है वो हो जाएगा, और इसके बाद में प्रबल रूप से हरिनाम संकीर्तन होने पर वो पूरा काम देगा। मान ले कि हमको घास छीलना है, तो किसी ने कहा जिस सोने की खुरपी से घास छीली, सोने की खुरपी से घास छीली जाएगी? उसे नहीं, वो तो लोहे के इस्पात के खुरपी से ही। ऐसे ही जहां जहां पर जिस अत्यंत बद्धावस्था में ये सब जरूरत, अपने अपने स्थान पर सबकी जरूरत है, किंतु नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सब वो साधन में भी है सिद्धि में भी, मंत्र साधन में है सिद्धि में भी, कोई भी सिद्ध पुरुष इसको नहीं करेगा, क्या जरूरत नहीं, अब तो हो गया काम। खूब अच्छी तरह से इस चीज को समझो, इसलिए यहां पर भी कर रहे हैं संकीर्तन जो है बद्ध अवस्था में भी संकीर्तन की आवश्यकता है, किंतु उसके साथ साथ में गोपाल मंत्र और महाप्रभु के मंत्र इत्यादि जितने भी दिए गए हैं गुरु जी ने जो दिया है उसकी उपकारिता है संबंध ज्ञान अर्जित करने और मन के धर्म से त्राण देने के लिए। यही मन का धर्म है विषयों में आसक्ति होना, विषयों से आसक्ति को ये दूर कर देगा। कोई आदमी खूब अच्छी तरह से एक वर्ष भी करे, पांच महीने करे, देखो जैसे उसका क्या प्रभाव जरूर हो जाए विषयों से बाहर, जैसे हो गया उसको ब्राह्मण को, गोप कुमार को भी हो गया, ऐसे जरूर हो, और नहीं है तो कहीं गड़बड़ी है, कहीं बीज में गड़बड़ी है अथवा कुछ पुष्ट बीज नहीं था, पुष्ट मंत्र नहीं दिया गया, देने वाला शुद्ध नहीं था, ये सब या हमारे करने में गड़बड़ी है, मन से हम नहीं करते, हाथी मारते हैं जहां वहां पर खूब मन लगा करके श्रद्धा के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, और कृष्णस्य नानाविध संकीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम् एव मुख्यं तत्प्रेम संपद जननी स्वयं प्राप्त सप्तम तथा श्रेष्ठतमं मतं स्यात्। ये दोनों याद करने के लिए आप लोगों के लिए कहा गया। कौन कौन याद किया है? याद है तुमको? कृष्ण के जितने भी प्रकार के नाम कीर्तन हैं, उनके रूपों का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके परिकरों का, उन सब में सबसे पहले नानाविध कृष्णस्य कीर्तनेषु तन्नाम कीर्तनम् एव मुख्यम्। उनका नाम कीर्तन सबसे मुख्य है। यदि मैंने कहा जरा इधर आ जाओ, कौन आएगा? मैंने कहा जरा इधर आ जाना तो आएगा कोई? ये बड़े गुणी आदमी हैं, बड़े सुंदर हैं, इनमें बहुत से गुण, इसलिए वो आ जाए। कौन आएगा? और यदि कुछ भी ना कहें, जब बांकेलाल जरा इधर आना, तो ऐसे ही भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जितने प्रकार के कीर्तन है, उसमें भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही, उसके साथ में नाम संकीर्तन के साथ में रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन हो तो और भी अच्छा। इस तरह से हे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, नमात्मक होना चाहिए। उसमें भी श्रेष्ठ जो नाम है कृष्ण परक, गोपियों के साथ संबंधित, वो नाम सबसे श्रेष्ठ है। तत्प्रेम संपत जनने स्वयं द्रा, यदि कृष्ण के चरणों में ब्रज में प्रेम को जल्दी से जल्दी कोई चाहता है तो संकीर्तन ही, नाम संकीर्तन ही सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिमान है, सप्तम तथा श्रेष्ठतम होता। इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम पुष्टम भाव के सहित नाम किया गया। नाम संकीर्तनम पुरोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपत्ति बलिष्ठ साधनम श्रेष्ठम परम आकर्षम मंत्रवत। ये जो नाम संकीर्तन है, प्रोक्तम कृष्णस्य, ऐसा कहा गया है सर्वत्र शास्त्रों में कि प्रेम संपत्ति को लाभ करने के लिए सबसे बलिष्ठ साधन है। इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन अब कीजिए। अब तब उपदेश दिया वो कीर्तन करने के लिए, श्री कृष्ण गोपाल हरि को, इस नाम को जब वो पृथ्वी लोक में आए तो उनके गुरु जी ने वो नाम दिया। ये यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे और उसी समय में महामंत्र का प्रचार चल रहा था। महाप्रभु नवद्वीप से आरंभ किया महामंत्र, जगन्नाथपुरी में भी महामंत्र चलता था, उसके बाद भी चलता था। तो सनातन गोस्वामी ने उसका कहीं भी ग्रंथ में जिक्र नहीं किया, महामंत्र के संबंध में नहीं लिखा। और बृहत भगवतामृत में ये नाम के लिए भी यदि कहा तो श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हरे नंद, तो क्या उनको पता नहीं था महामंत्र का? मालूम नहीं था उनको? और चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं। क्या कारण है कि इस मंत्र को नहीं दिया? युग धर्म में तो उसमें भी नाम संकीर्तन युग धर्म है, कोई स्पेशल के लिए कहा गया है न? क्या कलि संतान उपनिषद इत्यादि के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है? सब साधारण जनों के लिए महामंत्र ही सबसे उपकारी, महामंत्र है, सब अवस्थाओं में लिया जा सकता है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी विशेष रूप में कुछ कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ता है। हरे कृष्ण कृष्ण परक और राधा परक लाने के लिए, और इसमें कोई बाहर से कोई अर्थ लगाना नहीं पड़ता है। सहज रूप में राधा कृष्ण, राधा बल्लभ, राधा कांत इत्यादि का उल्लेख है, यशोदानंदन इत्यादि का उल्लेख है, इसलिए प्रतीति के लिए ऐसा कहा है। किंतु हम समझते हैं यदि कोई महाप्रभु के किए हुए या रघुनाथ दास गोस्वामी के किए हुए अर्थ को यदि कोई जानेगा तो निश्चित रूप में ये नाम नहीं करेगा श्री कृष्ण गोपाल हरि मुकुंद, वो क्या करेगा, क्यों करेगा, बड़ा विप्रलंभात्मक और सरस और ब्रज भाव से परिपूर्ण है। साधारण रूप में ये नहीं दिखता, जैसे बीज में कोई पेड़ नहीं दिखता, कोई पौधा नहीं दिखता है, किंतु उसमें है। और यदि कोई पारखी व्यक्ति है तो देखेगा क्या, इसमें तो ऐसा चीज है जो उस चीज में नहीं है, कुछ देख लेगा। जैसे दो गहिया हैं, दो हड़ियों में दोनों दही एक समान ही है, एक मीठी भी एक में मीठा देकर के मीठा भी कर दिया गया और एक में नहीं किया गया। एक पारखी ने दोनों दही को एकत्र करके उसको देख करके जो मीठी थी और सफेद थी या लाल थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो उतनी मीठी नहीं थी उसको कहा जी ये अच्छी है, ये 10 रुपया किलो होने चाहिए, और जो मीठी है और देखने में रंगीन है उसका जी 1 रुपया किलो होना चाहिए, क्यों, वो सरफेट उसमें से घी निकाल लिया गया है और तब उसको दही जमाया है और उसमें चीनी और कुछ सुगंधित जीत आर्टिफिशियल देकर के उसे बना दिया है, और उसमें कुछ भी नहीं है, केवल दही वो साधारण रूप में वो बनी है, उसमें प्रत्येक अणु अणु में भी घी है, इसलिए वो है। इसी तरह से इस नाम में हमारे गोस्वामियों ने इसका इतने प्रकार से 16 नाम है ना, 16 प्रकार से इसका अर्थ निकाल करके और साधन किया। जैसे हरे कृष्ण, और तो सब आप लोग अर्थ जानते हैं, हरे माने यहाँ हरति कुंजे कृष्णे जा सा राधा, जो कुंज में कृष्ण को आकर्षण करती हैं और सेवा करती हैं प्रेम भाव से, वो है हरे। तो बतलाओ तो ये इसमें कहाँ है, और सब संबोधनात्मक सब राम कुंजे हरण करने के बाद में जब कृष्णम रमयति, कृष्ण को भी रमण कराती हैं, आनंद देती हैं, सेवा करती हैं, वो हरे वहां राम के साथ में। यदि कोई सद्गुरु से रसिक वैष्णव से इन सब का अच्छी तरह से अर्थ समझ करके और भावपूर्ण भाव से कोई महामंत्र करता है ना, तब उसका ये यथार्थ स्वरूप कुछ कुछ तब इसको समझेगा, जे नहीं टेढ़े रूप में उसको नहीं लिया गया अर्थ के द्वारा, राधा कृष्ण नहीं यथार्थ नहीं ऐसा है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर किसी कारण से महामंत्र को नहीं लिया और इस मंत्र को लिया है, मंत्र नहीं मैंने ये नाम को, कोई भी जरूर इसमें कुछ होगा, नहीं तो कलयुगी जीवों के लिए शास्त्रों के अनुसार ही ये महामंत्र ही सबके लिए करणीय और कृतनीय है। छबरिया है ना, तो आज यहीं तक रहे, कल से फिर हम लोग विषय प्रसंग में आएंगे, जहाँ पर हम चल रहे थे नारद जी से और गोप कुमार से वार्ता होगी, उनको बैकुंठ में क्यों विरक्ति हो गई, इसके बाद में राम ने क्यों विरक्ति हो गई, और उसमें तत्वों का निरूपण है, उसको ऐसा मत समझ लेना जैसे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये सब को जानना भी आवश्यक है, और नहीं तो शुद्ध प्रेम ब्रज का प्रेम ये नहीं है। इसलिए इसको खूब सावधानी के साथ में हम लोग सुने और चलें और पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनं गौरत्यसेवि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हा देवी का तू भर भगदयाच जाते निपत्त भोगवतोद भटारती अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य दुःखं गंधर्विके तव गणेशं मंदेतुपुंडी जटं जागुजरोच संविदधतमपट्टम्बरस्य स्त्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितम् भक्त्या विघ्नापराधं चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नमस्ते चरणं गुरवे बहुवचनाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय फलभक्ताय वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन मानुन भिक्षु मंदं कृपां बुद्धिर्ज पर दुख दुखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मम रूपः कदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्णं वैपायनो विरहका सर्वाधिभावं पुत्रेऽपि तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं संक्रांति ओम संक्रांति मैंने क्या संक्रांति किसको कहते हैं पंडित जी
क्रांति वाले पार करना
क्रांति मैंने विद्रोह
नहीं शर्म मैंने शर्मुख को क्रांति मैंने पैर से चलना
पैर से सम्यक रूप से चलने को संक्रांति धीरे धीरे ना जल्दी जल्दी
धीरे
तो हम लोग तो सब समय संक्रांति में है
पारिवारिक संक्रांति हो सकती है जागतिक संक्रांति हो सकती
है ग्रंथ अष्ट तीर्थ वो कहीं जा रहे थे ना एक आदमी ने कहा कि महाराज जी पंडित जी आप इधर से मत जाइए तो क्या है तो इधर में बाघ एक है तो वो व्याघ्र आदमी को खा जाता है आप मत जाइए तो उन्होंने पहले उसकी व्युत्पत्ति की व्याघ्र जिघ्र जिघ्र धातु से ये व्याघ्र धातु ये बना है सब तो जिघ्र माने होता है सुनना वो तो खा नहीं सकता है तो वो सूंघ लेगा अधिक से अधिक, घ्राण वो करेगा। पर कुछ डर की बात नहीं है, वो कौल अधिक से अधिक तो उनका सूंघ ले सकता है, बात होगा अधिक। तो वो चला गया, तो जब गया भीतर बन में तो सचमुच त्याग और एकदम गर्जन करके उन पर टूट पड़ा। उनका जो ठीक ही भरा था, खादती अर्थ में भी कभी कभी व्यवहार इसका होता है, तो पंडित जी को उसमें याद नहीं आया, किंतु जिसने वो बाद में आक्रमण कर दिया है तब तक उनको खा चुका था। तो संक्रांति मैंने हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में वर्ष में सूर्य उनको अतिक्रम करता है, जब जब उनको वो जरूर पार करता है। मेष, वृष, कुंभ, मैथुन, ये सब राशियां हैं। उन राशियों पर जब सूर्य आते हैं तो उसी के अनुसार में ऋतुएं, सर्दी, जाड़ा, गर्मी, ये सब षड ऋतुएं सब उसी के अनुसार में होती हैं, जिसमें से मकर राशि, कुंभ राशि, मेष, वृष इत्यादि ये प्रसिद्ध हैं। तो जब सूर्य एक राशि को चल करके फिर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं संक्रांति। सम्यक रूप से अतिक्रांति जब एक को छोड़ करके दूसरे पर प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं संक्रांति। आज के दिन में सूर्य सबसे दक्षिण दिशा में वो था, अभी तक दक्षिणायन चल रहे थे सूर्य, और अपने लास्ट बिंदु मकर रेखा कहते हैं उसको, मकर रेखा को पर तक पहुँचे थे, पहुँचे और अब उसको पार करके इधर आ रहे हैं, लास्ट बिंदु तक चले गए थे दक्षिण दिशा में, और उसे अब पार करके इधर में आ रहे हैं। आज के दिन हमने पार कर 23 या 24 तारीख को बड़ा दिन था, 25 को, 25 दिसंबर उस दिन से, उस दिन उसको पार करके गए थे, उधर में थे। आज के दिन उसको पार करके उत्तरायण में, अब उसको कहते हैं उत्तरायण। अब ये उत्तरायण कब तक रहेगा? देव उत्थान एकादशी है ना, हाँ, तो उसमें कौन रेखा पर वो आएंगे, उसको जब पार कर लेंगे तो फिर वो दक्षिणायन हो जाएंगे, कर्कट राशि में गए तब फिर वो दक्षिणायन। अभी इसी में भीष्म पितामह जी इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे ना, जहाँ मकर संक्रांति में पार होकर के सूर्य उत्तरायण में आए तब उन्होंने सभी कुछ साधन इत्यादि के लिए, कर्म मार्ग साधन में, योगियों के साधन में उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत ही महत्व होता है। दक्षिणायन में यदि प्राण निकले तो उसकी गति कुछ दूसरी होती है, उत्तरायण में होने से उसकी गति, क्यों, अब सूर्य निकट आ रहे हैं, इसलिए सूर्य की किरणों के साथ में उनकी आत्मा मिल करके उस लोक में जाती है। तो आज के दिन में सूर्य मकर राशि को पार कर किए हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। आज के दिन में तिल का दान सर्वोत्तम माना गया और तिल खाना, क्यों, जो ब्राह्मण गरीब हैं किंतु देश के लिए उपकार का कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, आत्म तत्व में चिंतन में लगे रहते हैं, जो खेती बाड़ी नहीं करते, धन संग्रह नहीं करते, उनको तिल खिलाओ, ठाकुर जी के लिए, वैष्णव के लिए तिल दान, और स्वयं भी तिल खाना चाहिए, क्यों, इसके अंदर में तेल होता है जो शरीर को स्निग्ध रखता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को दान किया जाए और ऐसी चीज़ें व्यवहार किया जाए तो शरीर स्निग्ध रहता है, नहीं तो जाड़े से शरीर में बहुत सी ऐसी चीज़ों का अभाव हो जाता है जिस पर शरीर रुखड़ा हो जाता है, नहीं? खुजली हो जाएगी, चमड़े कुछ ऐसे हो जाएंगे, तो इसलिए इस सब को देख करके ही हमारे पर्व त्यौहार और ये सब चीज़ें, इसमें लोग स्नान नहीं करते, जाड़ों में बहुत से लोग आलसी हैं, नहीं? तो नियम बनाया गया ये इस दिन में जरूर स्नान करना होगा और डूब करके स्नान गंगा में जमुना में समुद्र में होगा। अच्छा, सबसे स्नान करने का महात्म्य सबसे अधिक कहाँ का है?
गंगा सागर।
आज लोग गए होंगे गंगा सागर में, कर्मी लोग जितने हैं जो पुण्य फल चाहते हैं वो सब गंगा सागर में गए। सबको कंबल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, खाने का द्रव्य खिचड़ी इत्यादि सब बंटन करें। कुछ उपकार भी होना चाहिए, कर्मी ऐसा नहीं जो अपने लिए सब कर, कुछ दान भी होना चाहिए। ये वो ब्राह्मण गोवर्धन वाला इसी मकर संक्रांति पर गया था गंगा सागर। लोग कहते हैं कि गंगा सागर एक बार और फिर बार बार एक बार जब ये स्नान कर ले तो यथेष्ट है। क्यों? एक बार जब कर लेगा तो उसका मन नहीं होगा जब फिर कभी जाए, लौट के नहीं जाएगा। कर्म मार्ग है ना, वहां पर मान लीजिए जैसे 50-60 हजार या 2-4-10 लाख आदमी आते हैं और छोटा सा टापू होता है, लोगों को टट्टी लगेगी, पेशाब लगेगा, कहाँ जाएंगे ना? वो किनारे किनारे पानी का के पास में करेंगे और जब ज्वार भाटा आएगा सबको बहा करके ले जाएगा और उसी में लोग स्नान करेंगे। तो इसलिए पुण्य ऐसा एक चीज है, पुण्य का एक बार फल भोग कर लिया स्वर्ग में तो चेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम सीने पुण्य मत्तलोकम विशन्ति। वहां जाएंगे ना तो वहां पर क्या है स्वर्ग में, वो गंगा सागर का फल है। काम क्रोध लोभ मद मोह माह सब ये सब कुछ बढ़ जाएगा, कांडा कांडी का ज्ञान नहीं रहता। जैसे बृहस्पति चंद्र इंद्र इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, जैसे कोई शराब पी करके मतवाला हो जाता है ऐसे कर्म मर्ग का फल सोमरस पान करते हैं क्या होता है, काम क्रोध लोभ मद मोह माह सब ये सब एकदम बढ़ जाता है। बढ़ करके उन लोगों को बुद्धि काम नहीं करती तो गर्भित काम भी वो कर लोग और फिर वहां से नीचे गिरहत पड़ते हैं इस जगत में। इसलिए यदि दान भी करना है तो जो सचमुच में संत हैं उनको कुछ लोग तो वो कर्म मार्ग को वो जला देंगे, उसका फल भगवान के प्रेम में लगा देंगे। यदि कुछ लेना भी दे तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सचो पूज्यो यथा हि अहम्, जैसे मैं पूज्य हूँ ऐसे ही वैष्णवों को अपना समझ करके उन्हीं को लो और जो कुछ देते हैं तो वो ले लो, तो वो कर्म मार्ग उसका कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए गंगा सागर में भी भीड़ लगी हुई होगी और इलाहाबाद प्रयाग में भी गंगा जमुना और सरस्वती की धारा वहां पर मिली है, आज वहां पर भी बड़ी भीड़ होगी। पहले भीड़ होती थी एकांतिक हरि कथा श्रवण और कीर्तन के लिए, आज कुछ उसमें राजनीतिक टंटे भी उसमें लग गए हैं, कुछ गड़बड़ियां चलती हैं क्योंकि साधु लोग भी अब कम हैं। अब विशेष करके शुद्ध जो संत लोग हैं वो बहुत कम जाएंगे उधर, न तो जाएंगे महासागर में सागर स्नान में भी नहीं जाएंगे और यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, वह लोग शुद्ध रूप में वृंदावन में रहेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, उनको यहीं से ही सब कुछ फल मिल जाएगा। और कुछ वो फल चाहते नहीं, वो तो प्रेम ही एकमात्र फल चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहीं पर आते हुए गंगा जी को स्मरण करें, जमुना जी को स्मरण करें और शुद्ध प्रेम फल भक्ति प्रेम मिल जाए। संक्रांति का यदि है फल तो यही है। आजकल दान का भी महत्व है तो तुम लोग भी दान मत लेना, यदि कोई दान के हिसाब से भी देता है तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। यदि उसका एक चावल का दाना भी तुम लोगों ने ले लिया तो फिर जन्म जन्मांतर गड़बड़ हो जाएगा, भक्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए खूब सावधानी के साथ में इन चीजों से अलग रहना, न दान लेना और न दान देना। आप लोग भी दान मत देंगे और दान मत लेंगे, कोई भी चीज दान मत दीजिए। यदि है तो सेवा वृत्ति से उसे भगवान का प्रसाद समझ करके उसे कुछ दीजिए। ये जितने जीव हैं जगत के, ये भगवान के प्रिय हैं, उनको हम सेवा करें, बस ये भावना से उनके उनको देने से भगवान इसको ग्रहण करें। और उठा करके ऐसे दे दे, किसको दिया ये मुख नहीं देते थे। तो एक दिन कोई ब्राह्मण आया, ये दान दे रहे थे,